अभी हमें हमारे भाई श्रीकांत भाई को निमंत्रण देता हूं कि अभी तक जो कुछ हुआ है और जो कुछ करने का इरादा है उसके बारे में आपके सामने ये पेश करें। सामने एजेंडा आपके सामने है ही।
ओम शांति। जैसे विनय भाई बता रहे थे तो आप इस सभा में जो भी स्पार्कलर्स पहली बार आए हैं उनकी जानकारी के लिए और जो लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने क्या क्या किया था वो एक समाचार आपको देंगे। जैसे इस एजेंडा में लिखा हुआ है कि प्रीवियस एसआईआर कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट और हम भाई साहब की जो आगे कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उनकी गाइडलाइंस लेंगे और उसके बाद हम आपस में एक छोटी सी मीटिंग की थी और कुछ सजेस्टेड थीम्स दिया गया है वो आपके सामने देखा जाएगा मना रखा जाएगा। फिर आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे आप भी जो थीम देंगे तो उसको हम फिर से एग्रीगेट करके और भाई साहब के सामने आज ही हम थीम फिक्स करेंगे और साथ साथ जैसे भाई साहब कह रहे थे कि डेट भी फिक्स होना चाहिए और वो भी आज फिक्स करेंगे। जैसे आपके सामने है अभी तक हम जो कॉन्फ्रेंस जो शुरू किया था जैसे राजकुमार भाई उस दिन बता रहे थे कि पहले पहले हम बीके भाई बहनों की मीटिंग करते थे एक एनुअल मीटिंग और सितंबर में भारतवासी की मीटिंग करते थे और 2003 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया बॉम्बे में डायलॉग के रूप में जिसके थीम रखा गया था स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस पार्टनर्स इन प्रोग्रेस और वो रिजल्ट इतना अच्छा रहा काफी बड़े बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पीएचडी स्कॉलर्स पार्टिसिपेट किए थे और वो रिजल्ट को देखते हुए 2007 में नॉन विकेज रिसर्चर्स की सेवा हेतु स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स थीम के अंतर्गत ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया जा रहा है और 2007 से लेकर अब तक 14 कॉन्फ्रेंस हम कंडक्ट कर चुके हैं उसमें से 8 मधुबन में या माउंट आबू में जैसे ज्ञान सरोवर और शांतिवन और बाकी 6 जो हैं अलग अलग शहरों में जैसे आपके सामने यहाँ पे हैं बैंगलोर भुवनेश्वर हैदराबाद पुणे और दिल्ली। और इसमें एक अच्छी बात है कि हैदराबाद हर साल कॉन्फ्रेंस करती है जब शुरू हुआ वो अभी तक 2 कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। ये आपको इसलिए दिखाया गया है अगर आप भी चाहे अपने शहरों में ये कॉन्फ्रेंस वन डे का कंडक्ट कर सकते हैं और जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती है उसमें किस टाइप के गेस्ट आते हैं और यहाँ पे उनकी प्रोफाइल दिया गया है पीएचडी पीएचडी किसी फील्ड के पीएचडी हो वो हमारे कॉन्फ्रेंस के गेस्ट बन सकते हैं डेलीगेट बन सकते हैं और साथ साथ जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर के होते हैं कुछ एनजीओ के भी होते हैं तो वहां पे रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स को भी हम कॉन्फ्रेंस में बुला सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि जो पीएचडी नहीं करते हैं और वो रिसर्च करते हैं लेकिन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का होता है जैसे बीटेक करते हैं एमटेक करते हैं वो भी साइंटिस्ट पोस्ट पर होते हैं उनको भी हम इनवाइट कर सकते हैं। और इसमें जो मेडिकल डॉक्टर्स लिखा गया है तो डॉक्टर माना कई बार ये भी आते हैं ऑब्जेक्शन कि मेडिकल विंग भी कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसमें भी डॉक्टर्स आते हैं हम ज्यादातर एनकरेज करते हैं जो डॉक्टर्स रिसर्च फील्ड में कनेक्टेड हैं और कुछ ना कुछ रिसर्च करते हैं उनको भी हम हमारी कॉन्फ्रेंस में इन्वाइट करते हैं। ये क्लियर हुआ क्योंकि मैं आपको इसलिए बताया कई बार हमारी भाई बहने प्रोग्राम अटेंड करते हैं मीटिंग सुनते हैं और ये बताने के बाद भी फिर पूछते हैं किस प्रकार के गेस्ट को हम इन्वाइट करें तो ये मना पीएचडी किसी फील्ड का हो चाहे वो लिटरेचर का हो चाहे साइंस में किसी फील्ड का हो चाहे आर्ट्स के कोई फील्ड का हो कॉमर्स के हो तो वो इसमें आ सकते हैं। और मेडिकल डॉक्टर्स भी आप इन्वाइट कर सकते हैं इसमें स्पेसिफिक हमने रखा है एमडी और एमएस। और एक आपके सामने हम ये रिजल्ट रखना चाहेंगे जब से स्पार्क के कॉन्फ्रेंस हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पार्क को और यज्ञों को क्या मिला है यहाँ पे एक है जो भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट आए हैं ऐसे उदाहरण के लिए हमारे 2008 की कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर विजय भाटकर आए थे जो परम सुपर कंप्यूटर के आर्किटेक्ट थे उन्होंने आए थे। उसके बाद जो भी बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डीजी लगभग सभी हमारी कॉन्फ्रेंस में आ चुके हैं और उन्होंने जो अपना ओपिनियन दिया है जैसे हम लोग उनसे मिलते थे कभी उनके फीडबैक फॉर्म में उनको हम यहाँ पर रखा है वो कहते हैं कि जब यहाँ पे आते हैं हमारा माइंड बहुत काम और क्वाइट हो जाता है, और हम जो चीज कभी कभी लगता है कि माइंड रिसेप्टिव नहीं है, और यहाँ आने के बाद वो गुण हमें मिलता है। अभी जो डीआरडीओ में एक लैब है, लाइफ साइंस रिसर्च लैब है, उनकी जो डीजी है मानस मंडल, ये माना जाता है कि भारत में वो सेकेंड पोस्ट पर हैं साइकोलॉजी फील्ड के हैं। जब उनसे मिल रहे थे, बात कर रहे थे, वो हमारे कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मना किया कि हम स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे कुछ ऐसे बातचीत हमने किया वो हमारे कॉन्फ्रेंस में आए, और जब 13 नंबर रूम को आए और वहां पे छत पर देखा पेंटिंग हुआ है, वो पेंटिंग को देख करके उनकी पूरी की पूरी माइंड की स्ट्रक्चर चेंज हो गया। वो कहने लगे कि रिसर्च, हम सोच रहे थे कि रिसर्च में ये पेंटिंग आर्टिस्टिक चीज यूज नहीं हो सकता है, लेकिन यहां बैठने के बाद मेरे अपने माइंड सेट चेंज हो रहा है, मतलब हम एक रिसर्च को कलरफुल बना सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो लेक्चर दिया, पूरे ज्ञान सरोवर के एटमोस्फेयर को एक्सप्लेन किया कि मुझे क्या लगा यहाँ पे। और आज सबसे ज्यादा सहयोगी वो भाई हैं, और यहां तक सहयोगी है, वो कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर हम भारत में जो अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी एक टीम बनाएंगे, और आपकी जो एक्सपर्ट है स्पिरिचुअल फील्ड में उनकी टीम को लेकर के जो हम राजयोग अभ्यास से हमारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है उसका ट्रिगर क्या है, वो ट्रिगर शब्द यूज करते हैं, ट्रिगर क्यों चेंज हो रहा है उसको हम फाइंड आउट करें, क्योंकि साइकोलॉजी में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो भी अभी वो पोस्ट पर है, और उन्हें टाइम भी लिया है 1.5 साल का, क्योंकि अभी अभी गवर्नमेंट चेंज हुआ है, काफी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है, उस वजह से मैं भी अभी मिला था 2 मास पहले, उन्होंने कहा मुझे 1 साल का समय दीजिए, और जो मैंने कहा वो करूंगा जरूर, एक अच्छा रिजल्ट इस कॉन्फ्रेंस का। और जैसे जो भी रिसर्च में मैंने कहा कि आईसीएमआर के डीजी भी आए हुए थे और कई बड़े बड़े साइंटिस्ट आए हैं, और इनकी यही रिजल्ट की वजह से हम आगे जो अलग अलग रिसर्च डिपार्टमेंट से मिलके हम शुरू कर किए हैं रिसर्च, जो आपको फोल्डर मिला है, अरे मना कलरफुल फोल्डर, इसमें आप बैक पेज में देख सकते हैं, वो सारे साइंटिफिक रिसर्च स्पार्क के साथ मिल करके वो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। इसमें नाम ऑलरेडी है, जस्ट इसमें डिस्प्ले किया हमने, इन लोगों से मिलकर हमारी रिसर्च अलग अलग फील्ड में चल रहा है। ये कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट है, उसमें एक जो सैंपल दिया है जो फ्रंट में है, वो उस समय डीजी थे डॉक्टर वी के सारस्वत, क्योंकि ये एक लीडर रोल प्ले किए, हमको इन्वाइट किया कि डीआरडीओ के साथ मिल करके साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए राजयोग मेडिटेशन के ऊपर। और उसके बाद निमान से हमको सपोर्ट मिला, एम्स से सपोर्ट मिला हमको, जैसे इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर दिल्ली से, और अभी और कई, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये दोनों मिलके बच्चों के ऊपर अभी एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसको हम 6 महीने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारे कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट हैं, और ये आप जो देख रहे हैं कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पार्क की रिसर्च लैब भाई साहब, और एक है सीसी, उस समय थे वो डीआरडीओ के एचआर सीसी, और डॉक्टर मानस मंडल भाई साहब के लेफ्ट साइड में है अगर आप देखेंगे वो, और उनके साथ नटराजन जो पहले डीजी थे डीआरडीओ के, और ये डायरेक्टर ऐसे मना कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट की उपस्थिति से हमें लैब उद्घाटन किया है, जो अभी नेक्स्ट 6 महीने के अंदर एक्टिवली हम उसमें काम करेंगे। और किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होगा यूज करेंगे हम कल की प्रेजेंटेशन आप देखेंगे। और इससे पहले हम इसमें जाने से पहले हम भाई साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, भाई साहब हम आपकी गाइडलाइन लेना चाहते हैं जो आगे की, अभी 2015 में हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसकी कॉन्फ्रेंस के प्रति आपकी क्या गाइडलाइन रहेगा, उसके हिसाब से हम आगे थीम और जो भी डेट फिक्स करेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, जो भी आपके सामने बैठे हैं सभी स्पार्कलर्स हैं, और हम सभी मिलके इस कॉन्फ्रेंस को पहले से भी और बेहतर करना चाहेंगे। भाई साहब
ओम शांति। मैं थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दूं साइंस और स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन की, क्योंकि जब से यज्ञ की स्थापना हुई तब से यही माना जाता था कि ईश्वरीय ज्ञान है वो स्थापना के लिए है और साइंस जो है वो विनाश के लिए है, और इसलिए माना जाता था ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, इस प्रकार की मान्यता थी, बहुत सॉलिड मान्यता थी, और इसी मान्यता में हम चलते भी थे और उसी के हिसाब से क्लासेस भी कराते थे, प्रदर्शनी के चित्र भी बने हुए थे, इस प्रकार से था। फिर 1983 की बात है, 1983 में अभिक्त बाप दादा की पधरामणी हुई थी। बाबा ने हमको, मुझे और उषा जी को सामने बिठाया और हम दोनों को कहा कि आपको सेंट्रल यूरोप में जाने का है, वहां के वैज्ञानिकों की सेवा के लिए 2-2.5 मास जाना है। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया बाबा की बात को। मैंने कहा बाबा, साइंटिस्ट की सेवा करने से क्या फायदा? बाबा ने कहा क्यों? मैंने कहा हम अभी तक तो हम यही मानते हैं कि साइंस जो है वो विनाश के लिए, हमें विनाश का कारोबार करना ही नहीं है, हमें तो करना है स्थापना और उसके साथ उसके बाद पालना का ही कारोबार करना है। साइंटिस्ट अपना कारोबार करेंगे, विनाश करेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा बताओ, सतयुग में तुम्हारा हेलीकॉप्टर और विमान कौन बनाएगा? बाबा ने ऐसे मुझे पूछा। मैंने कहा ये मेरा कोई प्रश्न नहीं है, आपका प्रश्न है। हमको सतयुग में एरोप्लेन हेलीकॉप्टर आदि जो भी चाहिए वो आप बना करके देंगे। तो बाबा ने कहा मैं तो आऊंगा नहीं, मैं कैसे बना करके दूंगा? तो बाबा ने कहा इसीलिए तो साइंटिस्ट की सेवा करने के लिए है कि साइंस फक्त विनाश के लिए नहीं है, परंतु साइंस सतयुग की दुनिया के कारोबार के अंदर वैज्ञानिक तरीके से जो भी कारोबार होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं एरोप्लेन आदि जो होता है उसके अंदर वैज्ञानिक शक्तियों का उपयोग तो होता ही है। तो बाबा ने कहा कि साइंस स्थापना के लिए भी है, सिर्फ विनाश के लिए नहीं है। तो ये जो मेरे साथ बाबा का जो डायलॉग चलता था वो सारी बात मुरली में भी आ गई। और उसके बाद हम, मैं और उषा जी 2 वर्ष सेंट्रल यूरोप जो है, जर्मनी है, फ्रांस है, स्वीडन है आदि आदि जो भी देश सेंट्रल यूरोप में आते हैं उनकी सेवा के लिए गए, 2-2.5 मास रहे वहां। खास जाकर के साइंटिस्ट लोगों की ही सेवा किए और वहां से सीधे लंदन 2 दिन जाकर के हम वापस आ गए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि तब तक 83 तक यही मान्यता थी कि साइंस इज फॉर डिस्ट्रक्शन, साइंस विनाश के लिए ही है और ये ज्ञान जो है वो स्थापना के लिए है, अर्थात नया विश्व की रचना के लिए और उसकी पालना के लिए। तो ये जो 83 में बाबा ने जो हमारा दृष्टिबिंदु जो है, दृष्टिबिंदु में परिवर्तन कराया और साइंस जो है वो स्थापना के कार्य में भी मददगार है, सहयोगी है, इस प्रकार का बनाया। और उसके कारण क्या हो गया, 83 के बाद जो है ये सारा कारोबार बढ़ता गया और बनता गया। और इसलिए ही जैसे उन्होंने बताया, श्रीकांत भाई ने बॉम्बे में रखा था साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस, इस प्रकार से साइंस और स्पिरिचुअलिटी का। और उसमें भी हम डेवोस में गए थे, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस स्विट्जरलैंड में। तो वहां पर जो सैंडोज का जो था एक डायरेक्टर, नाम में भूल गया, वो उनका जिसने एलएसडी एज ए ड्रग का इन्वेंशन किया हुआ था, वो रिटायर्ड हो गया था और वो आया था वहां पर डेवोस की कॉन्फ्रेंस में। हमारे साथ 3 दिन रहा, 3 दिन भोजन आदि किया और हमने उनके कई बातें बताई। वो भाई जो है सेंडो से रिटायर्ड होकर के उसने एक अपनी रिसर्च लेबोरेटरी शुरू किया था और उसके अंदर बहुत अच्छा टॉपिक रखा था, साइंस और स्पिरिचुअलिटी जो है ना, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक सिक्का होता है, सिक्के में 2 6 वो होते हैं, किंग और स्क्वेयर आप जानते हैं, करते हैं टॉस, उड़ा टॉस होता है उसके अंदर। तो इसके पर उसने इस प्रकार से कहा, साइंस और स्पिरिचुअलिटी 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, इस प्रकार से उसको मेहनत कर रहे थे कि कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन का कारोबार करे। उसके अंदर हमारे साथ में बात हुई, हमने बहुत उसके साथ बातें किया और उसने भी रियलाइज किया एटम ऑफ साइंस एंड आत्म आत्मा ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों के बीच में कितना घनिष्ठ संबंध है, उस प्रकार की बातों को लेकर के। और बाद में हम लोगों ने रिबर्थ या तो री इंकारनेशन इज ए साइंटिफिक टूल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इस प्रकार से इंटरनेशनल ऐसे कॉम्पिटिशन भी किया था। इस प्रकार से आस्ते आस्ते करते गए, इतने में ज्ञान सरोवर की स्थापना हुई। और ज्ञान सरोवर के अंदर दादी जी ने, आपको मालूम है इतिहास हो, हम लोगों को कहा कि आपको यहाँ पर ये करना है, रिसर्च का कारोबार कर रहे हैं। हमारे साथ उस टाइम पर डॉक्टर जो अभी पिलगुआ में है, डॉक्टर मित्तल, एसआर मित्तल, वो भी थे। उनको अच्छा लगता था कि कोई भी नाम ऐसा हो तो जिसका शॉर्ट फॉर्म करे तो अच्छा होता है। तो इसके कारण एप्लीकेशन, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर में स्पार्क जैसे आ गया, इस प्रकार से हो गया। तो इसमें एक समस्या आ गई, स्पार्क सभी कैपिटल लेटर्स जो होता है ऐसे नाम से एक संस्था रजिस्टर्ड हुई है। तो उसके कारण हम लोग सोचने लगे कि हमको क्या करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, एस कैपिटल किया, पी जो है शॉर्ट फॉर्म में किया, और फिर ए आर सी जो है वो भी लॉग में किया, मतलब कैपिटल लेटर्स में किया। तो इस प्रकार से जो भी कानूनी समस्याएं आई उसको कंट्रोल करते हुए उसको क्रॉस करके आगे बढ़ते गए। और फिर तो आप जानते हैं, स्पार्क पहले डिपार्टमेंट के रूप में था, फिर दादी जानकी के सामने हमने बात रखी कि दादी ये यज्ञ का एक डिपार्टमेंट के बदले में एक विंग्स बन जाए तो अच्छा है। तो दादी जी ने इसका स्पार्क को डिपार्टमेंट के बदले में अपग्रेडेशन किया और स्पार्क जो है एक विंग बन गई। और उसके बाद कॉन्फ्रेंसिस करने का भी शुरू किया। आप जानते हैं, आपको बताया भी, अभी तक 8 कॉन्फ्रेंसिस कर चुके हैं। अभी इस टाइम पर 9th कॉन्फ्रेंस जो है उसकी तैयारी करनी है। डेट्स के बारे में बता रहे थे श्रीकांत भाई, 2-3 प्रकार की डेट्स हमको मिल रही है सितंबर और अक्टूबर में, पिकअप करें जरा, वो सबको बता रहे हैं। आप बताया, बताओ ना।
2 डेट्स हैं सितंबर लास्ट वीक, क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया में रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के समय काफी वनवास से नहीं निकल पाते हैं। अगर अब
हमारे पुणे आदि के भाई बहन जो है महाराष्ट्र के, इन्होंने खास कहा कि गणेश चतुर्थी होती है और गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी विसर्जन तक का उन डेट्स में अपनी कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए।
और जैसे जन्माष्टमी है, राखी, बहने बिजी रहते हैं, वो भी निकल नहीं पाते, इसलिए हमारी जो कॉन्फ्रेंस हम अभी तक किए हैं ये राखी, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी के बाद रखते हैं। तो अगर अब हम देखें, अभी कैलेंडर देख रहे थे, 17 सितंबर जो है गणेश चतुर्थी का डेट है, अगर उसको हम प्लस आगे 10 डेज करते हैं तो 27th हो जाता है। और हम ऐसे डेट फिक्स करते हैं ताकि 2 दिन छुट्टी मिले, सभी निकल सके, अपने स्टडी लीव में आ सके। इसलिए हम कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं फ्राइडे इवनिंग को इनॉग्रेशन करते हैं, उसके बाद सैटरडे और संडे फुल डे प्रोग्राम चलते हैं, और मंडे को वैलिडिटी सेशन करते हैं, फिर लोग घूम करके रिटर्न जाते हैं। तो डेट ऐसे रहता है कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, और जाने का डेट ट्यूसडे होता है। तो वैसे देखेंगे तो
ऐसा नहीं है, देखो ना, अभी भी पीछे में तो काफी सीट खाली हो गई, कहीं चले गए हैं। यहाँ आकर के देखिए तो मालूम पड़ेगा, एक दिन के लिए आते हैं, कहीं 2 दिन के लिए आते हैं, कम से कम समझो 40-50 बहन भाई चले गए। जबकि हम लिखते भी है कि सुबह 8 बजे शुरू होगा और 3 तारीख रात को 8 बजे, ऐसा लिखा हुआ है ना,
8:30 बजे पूरा होगा,
8:30 तक का लिखा हुआ है।
तो उस हिसाब से हमारा ये डेट रखा जाता है, हमारे ये कॉन्फ्रेंस डेट का स्टैंडर्ड है। तो जैसे आप सब अगर कहेंगे कौन सी डेट करें, और 25 अक्टूबर भाई साहब फ्राइडे होता है, 25 सितंबर, फिर 25, फिर अगर फिर फ्राइडे करेंगे फिर 2 अक्टूबर
को महात्मा गांधी का बर्थडे होता है।
मना कह रहे हैं कि छुट्टी का डेट
जो भी है, आप मुन्नी बन से आए करके, क्योंकि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ना। अपना यज्ञ का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई, पहले हिस्ट्री हॉल था, हिस्ट्री हॉल हाउसफुल रहता था, उसके बाद मेडिटेशन हॉल हुआ वो भी हाउसफुल होने लगा, उसके बाद इंटरनेशनल पीस हॉल वो भी हाउसफुल होने लगा, फिर ज्ञान सरोवर हाउसफुल होने लगा, और फिर ये शांतिवन भी हाउसफुल होने लगा। यहाँ पर भी पर प्रोग्राम्स इतने करने के लिए लोग तैयार होते हैं, परंतु जगह नहीं मिलती है। तो इसलिए मुन्नी बहन से राय करके फैसला करो आप, हमारी आपस में राय कर लेते हैं, उसके बता सकते हैं कि ये 2 हमने डेट सजेस्ट किया है और जो भी दो जिसमें जो जो सजेशन मिले ऐसा है ना पंजाब
भाई साहब वेन्यू के लिए कई लोग सजेस्ट कर रहे थे कि प्रोग्राम ज्ञान सरोवर में रखा जाए आप जैसे कहेंगे
ज्ञान सरोवर में रखेंगे तो 400 से ज्यादा नहीं आ सकेंगे और फिर रहने करने के लिए इतनी अगवड़ होती है और सितंबर मास में कोई यहाँ गर्मी नहीं होती है ठंडी हो जाए मतलब बारिश का मौसम भी होता है अच्छा भी होता है वो तो आप सब नक्की करोगे तो 400 के होगा और फिर रहने वाले भी 400 आएंगे 100-125 उसका सेवाधारी होगा तो उसको 400 की हमारी संख्या बढ़ती जाती है। हमने कल ही रात को निर्भय भाई से कहा कि आपने जो हमारी स्पार्क की मीटिंग में कहा था हाँ कि स्पार्क शुड बी कन्वर्टेड इनटू फ्लेम हम विकास होना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए आप फिर भी कहो नक्की करो और ग्लोबल ऑडिटोरियम से फिर वापस इस अपने ग्रैंड सरोवर के हॉल में चले जाए तो हमको हर्जा नहीं है 400 होगा और 400 में फिर क्या होता है कि आने वाले आएंगे हाँ फॉर्म भर के देंगे बहुत उस टाइम पर बहुत प्रॉब्लम होता है वो कहेंगे बहने कहेंगे हमारे जिज्ञासु हमारे VIPs को आप नहीं छुट्टी देते हो फिर और ऐसे भी क्या होता है उसके बाद 20% लोग नहीं आते हैं अभी भी 615 लोग ने फॉर्म भरा था
670 लोगों ने
617 हाँ 615 और 17 में क्या फर्क है और कितने आए 450 भी नहीं आए
टोटल 480 आए हैं
480 आए और उसमें अभी 80 जो चले गए 400 ही रहे हो गए तो इस प्रकार से ऐसा होता है तो इसीलिए आने के लिए बहुत फॉर्म भर करके भेजते कहीं पीछे फॉर्म भर करके कंसेंट लेटर भी भेजते फिर बेचारे कईयों को छुट्टी नहीं मिलती है कईयों को और कईयों को टिकट नहीं मिलती है इस प्रकार से होते हैं। अभी भी अंबिका बहन ने बताया कि 20 भाई बहन हम बेंगलोर से आने वाले थे पर उनको छुट्टी नहीं मिली आने वाले आने के बाद भी क्या करते पूरा अटेंड नहीं करते कल निर्भय भाई बता रहे थे उनका क्लास था उस टाइम पर 25% लोग नहीं थे वे कहाँ गए इधर उधर घूमते थे शॉपिंग करते थे आबू रोड में मार्केट में गए कई लोग जो है ऊपर जाकर के पांडव भवन ज्ञान सरोवर देलवाड़ा आदि देखने के लिए गए तो आबू का एक बड़ी दिक्कत यहाँ है कि जो भी आते हैं वो उन समझते हैं यहाँ खाना पीना रहने का मिल जाएगा फ्री में बाकी यहाँ टैक्सी आदि कर करके घूमेंगे करेंगे ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है यहाँ और उसमें भी गर्मी के दिनों में रखते हैं तो और ही ज्यादा होता है। एक बार हमें जूरिस कॉन्फ्रेंस किया था तो मैं एक डेलीगेट आया एडवोकेट साथ में आपको अंदाज भी नहीं होगा इतना 24 लोगों को लेके आया 24 लोगों को कह रहा है मेरे रिश्तेदार है मैं डेलीगेट हूँ ये मेरे रिश्तेदार है सबको दो दिल्ली के अंदर एक सेंटर ने प्रिंट कर दिया कि जूरिस कॉन्फ्रेंस है जिसको भी आना हो आ सकते 5 दिन की कॉन्फ्रेंस है 5 दिन आपको रहना खाना पीना सब आपको फ्री में मिलेगा तो कितने 50-60 लोग आ गए हमने सबको मना किया तो भी कईयों के फॉर्म आ गए तो इसके लिए उनको रखना पड़ा हमने फिर उनको ज्ञान सरोवर में नहीं रखा पांडव भवन के उसमें रखा। इस प्रकार से यहाँ बहुत डिफिकल्टी होती है आने वाले घूमने के लिए इस हिसाब से ज्यादा आ जाते हैं। एक बार एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर 150 के ही लिस्ट आया था साइकोलॉजिस्ट थे सब साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट मेरा क्लास था तो मैंने उनसे पूछा कि जो कॉन्फ्रेंस के लिए तो डेलीगेट्स के रूप में आए हैं जो अभी बैठे हुए उसमें हाथ खड़ा करें तो 150 में से 3 लोग ही बैठे हुए थे बाकी जो है 147 जो है घूमने के लिए चले गए थे कोई नकी लेक में बोटिंग करने के लिए कहाँ कहाँ चले गए। पर एक बात पक्की है भोजन के टाइम पर सबकी 100% प्रेजेंस होती है खाना मतलब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर उस टाइम पर आप प्रेजेंस मार करो तो 100% प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए अभी क्या करते हैं हम लिखते हैं कि एक दिन ज्यादा जो है एक्स्ट्रा दिन है उस दिन घूमने का रखेंगे इस प्रकार से रखते हैं। तो भी कई लोग बहने भी सबको कहती है चलो चलो हम घूमने को जाते हैं यहाँ आए तो देलवाड़ा तो देखना चाहिए यहाँ आए तो ग्लोबल हॉस्पिटल देखनी चाहिए यहाँ आए तो गुरु शिखर देखना चाहिए ऐसी ऐसी बहने भी अपने डेलीगेट्स को एनकरेज करती है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सभी बहनों को कि प्लीज कॉन्फ्रेंस के लिए लेके आते हैं ऐसे डेलीगेट्स उनको कॉन्फ्रेंस में ही बैठने दो बाद में एक दिन छुट्टी का रखते हैं जिस दिन घूमने करने का रखा जाता है या नीचे से हम जो बसेस वाले जो है उसको हम मना ही कर देते थे कि आप इन दिनों में हमारे कोई भी डेलीगेट्स को ऊपर नहीं लेके जाएंगे। तो फिर क्या होता है मालूम है, टैक्सियां कर रहे थे, जीप कर रहे थे, परंतु उसमें चले जाते, बसेस में नहीं जाते। मतलब इस प्रकार से रास्ता निकाल लेते हैं बहन भाई। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि कॉन्फ्रेंस रखते तो सिंसियर कॉन्फ्रेंस के अंदर रहने वाले, आने वाले, समझने वाले और उसके आधार पर कार्यान्वित करने वाले, कारोबार करने में मददगार बने, ऐसे डेलीगेट्स को लेके आओ। क्योंकि इट कॉस्ट अस, खर्चा होता है यज्ञ को। आप एक एक डेलीगेट को लेके आते हो, सुबह में चाय पिलाना, फिर नाश्ता, फिर भोजन, फिर चाय और नाश्ता और फिर रात को भोजन। इस प्रकार से 5 बार रहना, खाना पीना। और जो भी यहाँ आते हैं डेलीगेट्स के रूप में, दे एक्सपेक्ट 5-स्टार फैसिलिटी। और घर में कुछ भी होता होगा, पर यहाँ को सब चीजें चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, एक भी बात की कमी पेशी नहीं होती। अभी 4 महीने पहले की एक बात आपको सुनाऊं। एक भाई ने लिखा कि मैं मधुबन आ रहा हूं, मेरी गाड़ी जो ट्रेन जो है रात को 2:30 बजे अबू रोड पहुंचती है, तो मुझे प्लीज रिसीव करने का बंदोबस्त करना। तो अपना जो सोमशेखर भाई जो है वो गया 2:30 बजे। जब गया तो वो उतरा ट्रेन से, तो उसने पूछा मेरे लिए बस मंगाई है? तो सोमशेखर ने कहा कि नहीं, आप अकेले आने वाले थे, इसके लिए आपके लिए एक के लिए बस कैसे मंगाएंगे, बहुत महंगी पड़ती है। तो आप चलो, मैं आपको रिक्शा में बिठा सकता हूँ, आपके लिए रिक्शा कर सकता हूँ, आपको चाहिए तो टैक्सी कर सकता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं तो VIP हूँ, मुझे तो बस ही चाहिए, बस के सिवाय और किसी में मैं बैठूंगा नहीं। तो अपने आपको मालूम होगा स्टेशन पर बाबा के लिए एक रूम बना कर दिया हुआ है, वो वहां बैठा 2 घंटा बैठा। इतने में सोमशेखर ने फोन किया वहां पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, वहां से जो ड्राइवर सोए हुए थे उसको उठाया, उसका खलासी को उठाया, फिर उसको सब तैयारी करके आए, 2 घंटे के बाद आया। परंतु VIP ट्रीटमेंट ही चाहिए हमको, एक के लिए भी बस चाहिए। इस प्रकार से यहाँ तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, इसलिए कल मैंने कहा ना, यहाँ आकर के काम करो तो मालूम पड़े कैसे कैसे बहन भाइयों के साथ कारोबार करना पड़ता है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि आप जिनों को भी डेलीगेट के रूप में लेके आओ, वो पूरा ही सिंसियरली कॉन्फ्रेंस के लिए आवे। उनको प्लीज ये प्रलोभन मत दो कि वहां पर तो दिलवाड़ा है, वहां तो ये है, वहां सनसेट पॉइंट है, आदि आदि जो भी आप जानते हैं, वो उस प्रकार से नहीं करें। और खास अगर माउंट आबू में कॉन्फ्रेंस रखी तो आप कितना भी मना करो तो भी, क्योंकि बाहर अभी जीप वाले आके खड़े रहते हैं, जिन्होंने भी देखा होगा बाहर जीप वाले खड़े होते हैं, वो आप जीप में जाकर के बैठ जाते हैं, जीप कर लेते हैं, कोई कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई ट्रांसपोर्ट वाले को भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कह देते हैं। इसलिए ऊपर रखने से ये डेंजरस है कि 25% तो हमेशा ही कॉन्फ्रेंस में एब्सेंट रहेंगे। अगर उनको मिलना हो तो नकेल लेके बोटिंग में जाकर मिलो उनको, या तो हॉर्स राइडिंग जो होता है वहां जाकर मिलो, या तो दिलवाड़ा का मंदिर देखते हैं, या तो गुरु शिखर के वहां पर जाके मिलो, ऐसे मिलते हैं। इसलिए सोचो इसके ऊपर, क्योंकि सबकी राय यही है, मेरा अनुभव यही है कि राय के बाद में क्या तो पश्चाताप होता है कि अरे ऊपर किया तो लोग घूमते रहते, 25% तो होते ही नहीं है। पर तो भोजन के टाइम पर, नाश्ते के टाइम पर, सब रात को सोने के टाइम पर सब आ जाते हैं। तो इसलिए ये बात आपको आपने बताई है ना कि सबकी इच्छा है ज्ञान सरोवर में करने की, मुझे इतराज नहीं है, परंतु इतना आप समझ लो 25%। और आबू रोड से माउंट आबू महंगा भी है, जब हम कंस्ट्रक्शन करते थे तो रेती जो सैंड का जो है, सैंड की एक ट्रक नदी से यहाँ 60 रुपये में आती थी, और वही ट्रक अगर ज्ञान सरोवर में बनता था तब 600 रुपये एक ट्रक का होता था। इस प्रकार से इतना कॉस्ट में फर्क पड़ जाता है। दूध आदि जो भी है, सब्जियां आदि जो भी है, यहाँ से सब्जी वाले सब लेके जाते हैं, यहाँ के मार्केट में 2 से 4 रात को खुली रहती है, और फिर ऊपर लेके जाते हैं, फिर प्रॉफिट करते हैं। होटलों में भी इतना ही होता है खर्चा। और शनि रविवार हम चाहते भी है, जैसे उसने बताया श्रीकांत भाई ने, शनिवार रविवार को ट्रैफिक यहाँ पर होटलों आदि में बहुत अच्छा होता है, संख्या बढ़ती रहती है। शुक्रवार रात से लोग आ जाते हैं, सोमवार सुबह जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। इसलिए माउंट में रखने में नुकसान नहीं है, परंतु ये बात का डिफिकल्टी रहेगी, 400 लोग ही रह सकेंगे। ज्यादा लोग रखते हैं, हमारी आर्ट एंड कल्चर की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 700 डेलीगेट्स आ गए, तो एक एक जो राजऋषि भवन है उसके अंदर चार की जगह 15-10 लोगों को रखना पड़ा। और इसके बाद फॉर्म जो भर के देने के लिए लिखा हुआ था उसमें सबने यही लिखा कि हमारे कमरे में चार की खटिया के बदले में 6-10 की खटिया रख दिया था। और उसके कारण 2 बाथरूम थे, उसके लिए हम समय पर तैयार होकर के नहीं आते थे। ज्यादा लोगों को उसमें रखने का प्रबंध नहीं है तो क्यों आप ज्यादा लोगों को रखते हो। और हम कहते हैं हमारा ओम निवास रखा हुआ है, अपना सुखधाम रखा हुआ, वहां जाओ तो कहते हम वहां नहीं जाएंगे, हम तो यहां इसी कैंपस में ही रहेंगे। इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है, मैनेजमेंट के अंदर आती है, किसके अंदर किसकी, वो अपने एक VIP को एक के बदले में दूसरे में रखवा देता है। हमने हमारे उपेंद्र त्रिवेदी जो आने वाला था आर्ट एंड कल्चर में, उसके लिए एक जगह रिजर्व रखी थी, तो एक बहन ने अपने VIP को उसके अंदर रख दिया, उपेंद्र त्रिवेदी आया उसके लिए जगह ही नहीं थी। इस प्रकार से काफी समस्याएं आती है क्योंकि ऊपर VIP रूम्स बहुत कम है, शांतिवन में तो VIP रूम्स काफी है, ऊपर में वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारी बातों का रियलाइजेशन करना चाहिए। हम वहां एकोमोडेशन बढ़ाना चाहते हैं परंतु सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि ऊपर में माउंट में नो मोर न्यू कंस्ट्रक्शन। हमारे पास प्लान में पास हुई जगह भी है, हमने समझा था आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे, अब जाएंगे ऊपर जाएंगे तो हिस्ट्री अपने जो हारमोनी हॉल है उसकी पीछे की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में पिलर्स भी खड़े हैं, पिलर्स हम लगा रहे थे क्योंकि हमने हमको वहां पर पहले स्टूडियो वहां पर बनाना था, वो बना रहे थे। इतने में वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया, कहते ये कैसे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। हमने कहा हमारे प्लान में पास है, टाउन प्लानिंग के डिपार्टमेंट से पास हुआ पड़ा है। कहता है नहीं, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट भी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, आपको नहीं करने देंगे। तो इसके कारण क्या हो गया, 1600 सीट्स नीचू है और 200 पीछे गैलरी में, 1800 सीट का अरेंजमेंट है और रहने का 400 लोगों का ही है। इसलिए इस सब बातें सब अनुभव की बातें हैं, एक्सपीरियंस की बातें हैं। जिनको इसका एक्सपीरियंस नहीं होता है समझते हैं कि ऊपर जाकर रहेंगे अच्छा होगा, हिल स्टेशन रहने की बात आ जाएंगी। और अगर हिल स्टेशन के नाम लिखा होगा ना तो 10% लोग ज्यादा भी आएंगे और इसके कारण अरेंजमेंट करने वाले जो भी होंगे उनको समस्या होगी। तो आप सोचिए, क्योंकि श्रीकांत भाई ने बताया कि सबकी इच्छा है हम माउंट में ज्ञान सरोवर में रखें, आप मुझे कोई इतराज नहीं है परंतु आपको रियलाइजेशन करना चाहिए। व्हाट इज रियलिटी, वास्तविकता क्या है। भावनाओं के आधार पर तो माउंट में होना ही चाहिए, माउंट में क्यों, शिमला में भी होनी चाहिए, उसमें क्या है। परंतु माउंट के अंदर जाके करने से ही पेशकाव के डिफिकल्टीज होती है। मुझे कभी एक आया तो सजेशन आया है कि देखो अभी यूथ विंग की मीटिंग जो है ना वो केरला में हो रही है, तो आप भी अलग अलग स्थानों पर मीटिंग करिए। मैंने कहा हम फंक्शन तो करते हैं, अभी देखो इसके अंदर भी लिखा हुआ है कहाँ कहाँ हो रही थी, 14 कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ हुई, अलग अलग स्थानों पर करते ही है। इस प्रकार से कैसे करे वो आप सब नक्की करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऊपर ज्ञान सरोवर में ऊपर करना चाहिए या नीचू में ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। 500 यहाँ भी है और ज्यादा करना होगा हाँ तो ऊपर सीट से, और फिर सेमिनार हॉल भी ऊपर नीचे है, सब जगह पर है, सब जगह पर कारोबार हो सकता है रहने करने का। खाली एक ही दिक्कत यहाँ है कि डाइनिंग रूम जो है वो मेन शांतिवन कॉम्प्लेक्स में है, यहाँ से बसेज आती मिलती है, आना जाना करना पड़ेगा। पर एक बात ये भी बता दो, हिल स्टेशन जैसा यहाँ का पानी जो है थोड़ा भारी है और इसलिए पैदल करना ही चाहिए, पैदल करेंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो क्या करना चाहिए आप पूछो, सबको हाथ हाथ खड़ा करवाओ ना। क्या हुआ, किसके लिए हाथ खड़ा करते हैं, ऊपर के लिए या नीचे के लिए? आप पूछो।
अच्छा, जो चाहते हैं प्रोग्राम शांतिवन में हो हाथ उठाएंगे सभी,
और ध्यान सरोवर में होने वाला उसके लिए बोलिए।
अच्छा
ज्ञान सरोवर में, दूसरा एक प्रश्न पूछ लो, आप में से कौन कौन कॉन्फ्रेंस में आना चाहेंगे? तो आप इतने आने चाहते हैं तो विषय तो ज्ञान सरोवर में रखेंगे तो 400 में से 250 तो यहाँ ही हो गए, तो डेलीगेट्स कितने, 250 अपने मेंबर और डेलीगेट 150 होगा, ऐसा कैसे होगा? क्या विचार, सबने तो हाथ खड़ा किया।
भाई साहब यहाँ पे इस जगह पे करने से, हमने किया था 2011 में इस ऑडिटोरियम में, तो यहाँ बैठने की सुविधा के हिसाब से बीके भाई बहन तो बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन होते हैं, जो प्रेजेंटेशन होते हैं स्पीकर जो बैठते हैं नीचे,
नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है सब यहाँ नहीं, पहले तो यह नहीं था, तो कॉन्फ्रेंस हॉल में भी
जी वही बात
किया था,
मना
ऐसी कोई बात नहीं है।
कॉन्फ्रेंस हॉल में करने के लिए आप सबके सहयोग चाहिए कि वहाँ की जो स्ट्रेंथ है 1500 से 1700 का है, क्योंकि ये 1700 गेस्ट लाने के लिए आपको गेस्ट कॉन्टेक्ट करने होंगे, इन्विटेशन देने होंगे, लेके आने होंगे, तो जैसे यहाँ पे 400
संख्या तो बढ़ सकती है अगर हर एक यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं समझे कि जैसे हम लोगों ने एक बार प्रोग्राम बनाया था ईच वन टीच वन, इस प्रकार से ईच वन ब्रिंग टू डेलीगेट, इस प्रकार से नक्की करे तो 1500 आराम से हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कॉन्फ्रेंस हॉल जो वहां नक्की, रहना भी अच्छा नजदीक हो जाएगा, भोजन भी नक्की हो जाएगा नजदीक हो जाएगा।
अच्छा आप सभी जो यहाँ पे अभी बैठे हैं, माना आपकी कांटेक्ट होंगे जो भी गेस्ट को आप लाना चाहते हैं, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि ईच वन टीच वन, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम जो यहाँ पे आए हैं एक भाई एक बहन, तीन तीन गेस्ट लेके आएंगे तो 1200 हो जाएगा, ठीक है, बाकी बार गेस्ट आएंगे तो पूरा हॉल भरने के लिए गेस्ट, बीके नहीं गेस्ट के लिए 1500 चाहिए हमें, तो अगर आप सभी हाँ कहेंगे तो फिर
आपको क्या, मैं सीधा ही प्रश्न पूछ लू, ये बेचारा डरता है आपसे पूछने में, मैं सीधा ही प्रश्न पूछू, 1500 का कॉन्फ्रेंस हॉल मिले, 1500 से कितना सर?
वहाँ 1700 का है,
1700 का है, 1700 का है, तो आप क्या समझता हूँ हिम्मत रख करके 1700 का कैपेसिटी का हॉल भर जाएगा, ऐसा प्रयत्न करेंगे, आप सबका सहयोग होगा तो हो सकता है, जो ऐसा सहयोग देने के लिए तैयार है और 1700 का हॉल रमेश भाई भर ही जाएगा, ऐसा निश्चय बुद्धि बन करके जो समझते हैं वो हाथ खड़ा करें।
बस अभी 50% हो गया ये अभी ये संख्या 50% हो गया
नहीं नहीं ज्यादा लोगों को लेके आने की बात है ना, इसके कारण वो भी हो जाएगा, इसलिए कल्चरल प्रोग्राम भी बाजू में ही वो जो है डायमंड हॉल है वहाँ हो सकता है, कल भी देखो उसका अंदर प्रोग्राम हुआ बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज का,
जैसे भाई साहब कह रहे हैं ये तो आराम से हो सकता है, क्योंकि अभी हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं 2007 से लेकर अब तक हम कुल मिलाकर के 20 रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास पहुंच चुके हैं अभी तक, और कितने आप सोचिए सेवा अभी तक हुआ ही नहीं है, और लास्ट भी हमने कहा था और वही रिपीटेशन हुआ, नए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से कोई गेस्ट नहीं आए, हर एक शहरों में तो होता ही है, तो हम चाहेंगे इस बार जैसे आप नाम गिनती करेंगे DRDO ISRO निमांस एम्स और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन उससे ही आते हैं, बाकी और बहुत सारे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं।
नहीं ऐसा तो नहीं है, बाकी कहीं हिंदुस्तान में बहुत सी लैबोरेटरी बड़ी हुई
है। उसकी सेवा करना है, उनको लेके आने वो बात कह रहे हैं, और वो होता है तो 1500 क्या, वो तो डायमंड हॉल ही भर जाएगा।
हमको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, वी मस्ट मेंटेन बैलेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी
जी,
क्योंकि क्वांटिटी में से ही क्वालिटी निकल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है
जी जी। नहीं भाई साहब जैसे हमारी पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल है PhD MPhil और डॉक्टर्स, ये तो संख्या मतलब सेवा करने से संख्या तो होती है और ये सारे क्वालिटी होते हैं,
तो यहाँ तो अच्छा है ना, यहाँ भी बैठ सकते हैं, 500 आएगा तो यहाँ 1500 आएगा तो उधर करेंगे
जी जी। वैसे सुविधा के हिसाब से कॉन्फ्रेंस हॉल हमारे लिए सबसे अच्छा है,
कॉन्फ्रेंस हॉल,
कॉन्फ्रेंस हॉल अगर हमको शांतिवन में करना ही है तो कॉन्फ्रेंस हॉल सबसे अच्छा है,
जो मिलना चाहिए मिलेंगे तो करेंगे,
अगर सब लिखेंगे तो मिलेगा, अगर हम उनको 1500 की गेस्ट बताते हैं मिल जाएगा सर लिखने से,
कर दो उसमें क्या है, 1500 हो सकता है, आप सबकी हिम्मत और सहयोग के आधार पर मैं उनको कहता हूँ कि 1500 का हॉल के लिए मुन्नी बहन को बोल दो, ठीक है, जो ऐसा हिम्मत से हमको मदद करने के लिए तैयार वो हाथ खड़ा करें। ठीक है 1500 हो सकेगा ना, ठीक है देखो ये जरा डरता है हमारा श्रीकांत भाई। वो कहते हैं स्टेटिस्टिक इस प्रकार से कहती है, मैं स्टेटिस्टिक्स में मुझे मालूम है बीकॉम में 60 में से 60% मिला था, 100% मार्क मिला था। और स्टेटिस्टिक्स का ऐसा सिद्धांत है, यू कैन फूल एनीबडी एंड एवरीबडी विद द हेल्प ऑफ स्टेटिस्टिक्स। अगर ऐसा करे तो क्या हो जाएगा, 750 में से 750 करेगी गली की, 750 इनकी वाइफ होगी, और फिर जो परिवार सहित आते हैं ना वो घूमने में ही ज्यादा जाते हैं।
नहीं वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए जैसा।
दुनिया में ऐसा नहीं होता, हमारी चार्टर्ड अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस होती है ना, उसमें समझो दिल्ली में विज्ञान भवन में हुई तो 10% से भी कम लोग जो है अपनी युगल सहित आते हैं, क्योंकि जानते हैं जहां जाएंगे तो कॉन्फ्रेंस में अटेंड नहीं कर सकेंगे। जो वेल्ड के सहित आना चाहते हैं वो इसका मतलब यही होता है कि घूमने करने के लिए ज्यादा आएंगे। आपने आज के अखबार में पढ़ा होगा जो हमारी टीम जो गई हुई है ऑस्ट्रेलिया में, उसके अंदर यही कहा कि अभी होटल में रहो ठीक है, परंतु उसके बाद जब टूर्नामेंट चलती होंगे तो वाइफ और उसको नहीं रखेंगे, नहीं तो क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। एक्सट्रीम केसेस में जब कोई वीआईपी डेलीगेट आता है उसके होता है तो उसको हम अलाउ करते हैं, जैसे जूरिस कॉन्फ्रेंस में जजेस होते हैं तो उसको उनके युगल से आने की छुट्टी, बाकी किसी को नहीं देते, मेरे तो आधा वो ही हो जाए। और फिर हम वाइफ को छुट्टी देते हैं तो फिर पत्र लिखते हैं हमारे बच्चों को हम कहाँ रखें। तो बच्चों को भी लेना ले जाता है, इसलिए क्या होता है सब MBBS बन करके आते हैं, मालूम है MBBS मियाँ बीवी बच्चों सहित।
ओम शांति। अभी मैं आपके सामने पिछली जो कॉन्फ्रेंसेस हुई उसके उसके शीर्षक पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका नाम ही हमने स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स, और उसके आधार पे सर कॉन्फ्रेंस एक थीम हमारा पक्का हो गया।
वैसे शॉर्ट में करो 6 बजे पूरा करना है,
स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स
सर, अगली का करो ना सीधा ही।
दूसरा स्पिरिचुअलिटी फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर तीसरी कॉन्फ्रेंस में रिफ्लेक्शंस एंड रियलाइजेशंस इन रिसर्च, फिर चौथा है कन्वर्जेंस ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर वर्ल्ड रिन्यूअल, ऐसा एक शीर्षक रखा गया था। पांचवी कॉन्फ्रेंस थी एम्पावरिंग रिसर्चर्स थ्रू एप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, उनका सशक्तिकरण प्रायोगिक और आध्यात्मिकता द्वारा। छठी कॉन्फ्रेंस थी स्पेक्ट्रम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इसे SOS नाम दिया था, ए होलिस्टिक अप्रोच इन रिसर्च। स्पेक्ट्रम माने इंद्रधनुष के जो 7 रंग बनते हैं, किसी भी प्रिज्म में से प्रकाश को निकालने से उसके आधार पर नाम दिया था। सातवीं कॉन्फ्रेंस थी रोल ऑफ रिसर्चर्स इन शेपिंग द सोसाइटी, समाज नवनिर्माण में उसकी भूमिका। आठवीं थी जो पिछले साल हुई फोस्टरिंग रिसर्च, उसको पोषण देना टू बिल्ड वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, मूल्यनिष्ठ समाज की रचना के लिए अ होलिस्टिक अप्रोच, एक तरफा नहीं सब तरफ से उसका अप्रोच हो इस तरीके से। तो ऐसे 8 कॉन्फ्रेंसेस हमारी हो चुकी हैं, अब नवी कॉन्फ्रेंस के लिए आपके पास से हम ऐसे ही टाइटल्स की मांग करते हैं, कुछ सोचे हैं लेकिन आपके पास से आपके सजेशंस मिले, और सबसे निवेदन है कि लिखकर इनबॉक्सेस यहाँ पड़े होंगे, नहीं है तो मंगवा लेंगे, लेकिन जरूर जरूर आप उसमें सजेशंस अवश्य डालें, उसको फाइनल शेप देने के पहले आपके सजेशंस को हम लोग पूरा पूरा ध्यान में रखेंगे और सामयिकता देखेंगे टाइम के अनुसार कितना वो एप्रोप्रिएट है उस आधार पे लेंगे।
मैं एक बात ऐड कर दूं, हमारे पास सजेस्टेड जो टॉपिक आया हुआ है इसमें है मॉडर्न साइंस एंड एंशियंट फेथ, ये टॉपिक मिलता जुलता ही है। अभी बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस कालीना में हुई थी सांताक्रूज में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर था, वो इसका इंचार्ज था, और नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उसका उद्घाटन किया था। और उसके अंदर एंशियंट विजडम के बारे में, हिंदुस्तान में उस जमाने में एरोप्लेन था, पंकज पुष्पक विमान था, आदि आदि इस प्रकार से पुरानी इतिहास की बातें ही करते थे। हमारे पास अग्निअस्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, इस प्रकार से। तो साइंटिस्ट दुनिया के जो फॉरेन डेलीगेट्स है, उन सबने ऑब्जेक्शन लिया कि पुरानी बातें थी। नासा ने भी इसके लिए भेजा अपना कंप्लेन का लेटर के दिस इज नॉट साइंस, इंसिडेंट बातें जो है लिख करके जो कि हमारे देश में ये था। तो आज उसके आधार पर क्यों नहीं आपके वहां काम होता है? तो जो पुरानी बात हो गई वो हो गई, हम भी यहां पर इस प्रकार से रखे, टॉपिक रखे, आप सबकी राय हो तो रखे। और बाबा जो जिस हिस्ट्री को मना करता है वो हमको मानना पड़ेगा, मॉडर्न साइंस एंड एंशियंट फेथ और यहां तो एंशियंट हिस्ट्री, जो भी आप करो। इस प्रकार से बहुत हमारा बॉम्बे में उस साइंस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही अच्छा हमारे स्पार्क के भाई बहनों ने काम किया था, उसका रिसर्च बताना चाहिए, रिपोर्ट बताया। ठीक है, तो वर्जी आप सर नाम आएंगे तो फिर कोर ग्रुप मीटिंग में पास करेंगे, ऐसा करें। हाँ पढ़ के सुनाओ।
सजेस्टेड में है एक्सप्लोरिंग इनर स्पेस रीडिफाइनिंग रिसर्च फ्रंटियर, दूसरा है फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू कोहिजन, तीसरा है फ्रॉम रिसर्च टू प्रैक्टिस क्रिएटिंग एज फ्रेंडली वर्क प्लेसेस, फिर हार्नेसिंग द पावर ऑफ साइलेंस, ये भी एक शीर्षक है, इनर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी इन एवर चेंजिंग वर्ल्ड, निरंतर परिवर्तनशील जो दुनिया है उसमें हमारी शक्तियों को स्थिर करना, जस्ट ए मिनट टेक्निक फॉर ए बिजी लाइफ, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट विदेशों में हो भी चुका है, जर्नीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस आंतरिक परिवर्तन की यात्रा, लिविंग इन द लाइट प्रकाश में जीना, मॉडर्न साइंस एंड एंशियंट फेथ, भाई जी ने बोला कि ये हुआ था तो उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं बनी, डेवलपिंग रिसर्च एक्यूमेन थ्रू स्पिरिचुअलिटी, फिर एक्सप्लोरिंग 11th डायरेक्शन ऑफ फैंटास्टिक वॉयज, 11वीं दिशा के बारे में आप सबको वैसे मालूम होगा, 2 दिन पहले ही बातचीत हो चुकी है, फिर रिसर्च एंड स्पिरिचुअलिटी द फीनिक्स सिंड्रोम, फीनिक्स एक ऐसा पक्षी है जिसकी 500 वर्ष की आयु होती है, अपने में से ही माइथोलॉजिकल बर्ड है वो, और ऐसी अग्नि उत्पन्न करके राख बनता है और राख में से फिर से उत्पन्न होता है, उसे फीनिक्स बोलते हैं। तो एक प्रकार से नहीं, ये रिसर्च एंड स्पिरिचुअलिटी, फिर रिलैक्स रिचार्ज रिज्यूवेनेट, फिर उसके बाद में अशरिंग रिफाइंड साइंस टू द गोल्डन वर्ल्ड थ्रू स्पिरिचुअलिटी, फिर एक्सपीरियंसिंग ओएसिस ऑफ पीस, ओएसिस माने राजस्थान में यानी रण में रेगिस्तान में ऐसी जगह आती है जहां पे पानी होता है, खजूर का वृक्ष होता है, उसे बोलते हैं रणद्वीप वैसे बोलते हैं। और भी सजेशन है, स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस इन प्रैक्टिकल लाइफ, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स फॉर वेलबींग, द आर्ट ऑफ कीपिंग ए क्लियर पर्सपेक्टिव, द पावर ऑफ कोलेबोरेशन, द क्वेस्ट फॉर ट्रूथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, द व्हाई ऑफ रिसर्च, फिर टाइमलेस विजडम, ये भी एक हो सकता है, और रीथिंक रिकनेक्ट रिज्यूविनेट। अब आपके लिए मंच खुला है, आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, और इनमें से कोई आपको अच्छा लगा हो तो उसको रीइन्फोर्स भी कर सकते हैं, आपके सजेशंस बॉक्स में भी आ सकते हैं, और मौखिक स्वरूप में देने के लिए हमारे पास कुछ समय बचा है तो उस समय उसमें आप बोल सकते हैं।
सीएसआर का करेंगे ना? हाँ। वो भी है ना। आज एक सवाल पूछ लूं आप सबसे, अगर कॉन्फ्रेंस हमारी होती है कॉन्फ्रेंस हॉल में तो साथ में थोड़ा कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा बतावे, हाथ खड़ा करें। अच्छा, कल्चरल प्रोग्राम होना तो चाहिए, आपको मालूम होगा हमारी पहली पहली मीटिंग सर्विस की प्लानिंग की हुई थी ना, तो ब्रह्मा बाबा आए तो उद्घाटन करने के लिए, तो बाबा ने कहा कि मैं आज चुबो की मीटिंग में उद्घाटन करने के लिए आया हूँ। तो हम सब ने ऑब्जेक्शन लिया कि बाबा हम कोई चूहे नहीं है। बाबा ने कहा आप सब चूहे ही हो, क्योंकि चूहों की मीटिंग में नक्की होता है कि बिल्ली के गले में घंट बांधना चाहिए, परंतु तो कोई घंट कौन बांधेगा वो कोई हाथ नहीं उठाता है। सजेशन सब देते हैं कि बिल्ली के गले में घंट बांधना, इस प्रकार से आप लोग सजेशन देंगे बाबा ऐसा होना चाहिए बाबा होना चाहिए, जैसे कि बाबा को सारा करना होगा और आप खाली राय बहादुर बनेंगे। इस प्रकार से आपने अभी हाथ तो खड़ा किया कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए, परंतु कल्चरल प्रोग्राम के लिए आर्टिस्ट कलाकार आदि को कौन लाएगा, वो भी साथ में बताते रहना। ऐसा नहीं कि श्रीकांत भाई सब मेहनत करें और आप तालियां बजाते रहो, सबका सहयोग होना चाहिए। हमारा एक टॉपिक था, आपको मालूम होगा, सबके सहयोग से सुखमय संसार। पुराना भाई जो बैठे हुए हैं उनको मालूम होगा, सुखमय सबके सहयोग से सुखमय संसार।
ओम शांति। रिलेशन बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी,
डिजाइनिंग द साइंस ऑफ फ्यूचर,
डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्च एथिक्स,
सोशल रिवॉल्यूशन बाय रिसर्चर्स थ्रू स्पिरिचुअलिटी।
ओम शांति। अभी जिस तरह से मेटेरियलिस्टिक लाइफ बढ़ रही है, मेटेरियलिज्म बढ़ रहा है, तो उस सब्जेक्ट के साथ में स्पिरिचुअलिटी को कैसे जोड़ा जाए, उस दृष्टि से रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन मॉडर्न मेटेरियलिस्टिक लाइफ, ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है।
ओम शांति। द टॉपिक इज सजेस्टेड साइंटिफिक टेम्पर, फोस्टरिंग साइंटिफिक टेम्पर थ्रू स्पिरिचुअल अप्रोच,
मैग्नीफाइंग रिसर्च थ्रू स्पिरिचुअलिटी, मैग्नीफाइंग रिसर्च थ्रू स्पिरिचुअलिटी,
चेंजेस इन सोशल वैल्यूज थ्रू हाई अल्टीट्यूड ऑफ सेंस।
ओम शांति। स्पिरिचुअलिटी इन साइंस एंड साइलेंस फॉर प्लेजेंट वर्ल्ड, एंड दूसरा है साइंस फॉर फ्रॉम प्लेजेंट वर्ल्ड टू प्लेजेंट वर्ल्ड, स्पिरिचुअलिटी इन साइंस एंड साइलेंस।
अच्छा, इसमें हम ये करेंगे, मतलब साइंस साइलेंस जो है स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है, मतलब
फॉर प्लेजेंट वर्ल्ड।
ठीक है।
स्पिरिचुअलिटी ए मस्ट फॉर रिसर्चर्स,
spirituality for empowering the universe within,
enhancing research work through spirituality,
scientific temper and spiritual wisdom STSW, scientific temper and spiritual wisdom vision for golden era,
research in sciences mixed with divinity.
There are a few suggestions: ancient science for modern world, a timeless wisdom for modern research, or timeless wisdom for new world, spiritual science and modern research, and spiritual wisdom and modern research. Iska kuch combination kar
sakte hain. Okay.
Spirituality search within for a new world order,
science, silence and spirituality.
Thanks for all those suggestions. And you can still submit your suggestions in this box.
मुझे एक विचार आया है, मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि यज्ञ के अंदर हमारे जो IT टेक्नोलॉजीज जो है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कनेक्शन में, आप जानते हैं प्रिंट मीडिया आदि आदि जो भी है, वो सब IT टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाता है। और हमारे यज्ञ के अंदर 3,000 से 4,000 लोग जो है IT टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट भी है। आजकल आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आदि आदि सब इसी दुनिया के अंदर, उसके अंदर ही सबसे ज्यादा में ज्यादा सैलरीज भी मिलती है, और उसके अंदर जाते भी है, देश विदेश में जाते हैं, काफी होता है। और आप जानते हैं कि IT टेक्नोलॉजी का जो है हब जो है वो बेंगलोर है नंबर वन, और नंबर टू है हैदराबाद है। तो इसलिए उनके लिए एप्लीकेशन के लिए आती है, यज्ञ ने उनको मंजूर नहीं किया एप्लीकेशन IT टेक्नोलॉजी की सेपरेट विंग करने के लिए। अगर वो विंग बन जाती है तो अलग बात है, तब तक अगर हम, क्योंकि बेंगलोर में ही हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है पर स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर मीटर या तो जो भी कहो स्क्वायर किलोमीटर इसमें हाईएस्ट डेंसिटी है तो और वहां के अगर करते हैं तो वहां इन्फोसिस है आदि आदि जो भी है आजम प्राइम जी की भी वो है बहुत सी कंपनियां भी उधर टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट करते हैं या तो बेंगलोर में भी करते हैं या तो हैदराबाद में भी करे क्योंकि इन्फोसिस जो है वो एकदम अपने नेक्स्ट डोर नेबर ही है तो इस प्रकार से ऐसे कॉन्फ्रेंस करें उनके साथ में कोलोबरेशन में करें और उनके साथ में करते हैं तो क्या होता है कि एक उनका सपोर्ट भी मिल जाता है जैसे मैंने आपको कहा हमने रिबर्थ इज अ लॉ ऑफ रिसर्च इज यूनिवर्सल लॉ उसके अंदर पास्ट लाइफ थेरापीज एसोसिएशन अमेरिका का मिल गया उसके कारण क्या हो गया बहुत ही अच्छी जिससे हमारी ऐसे कॉम्पिटिशन हुई 300 साढ़े 300 बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी वाले ऐसे आए इस प्रकार से हो सकता है तो एक कोई बेंगलोर वाले या हैदराबाद वाले बैठे हुए हो तो अंबिका भी ढूंढ रहा हूं पर नहीं मिलती अंबिका भी नहीं है तो इस प्रकार से बेंगलोर या तो हैदराबाद के अंदर बेंगलोर में भी इन्फोसिस की हेडक्वार्टर्स है और हैदराबाद के अंदर भी नेक्स्ट डोर नेबर ही है इन्फोसिस इनके साथ कोलोबरेशन के मिल करके कारोबार करें तो अच्छी हो सकती है और इसके कारण क्या होता है कि आगे चल करके जब आईटी टेक्नोलॉजी जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसकी विंग बन जाएंगी तो अच्छा हो जाएगा आप सोच रहे हैं अंबिका बिन आ गए हैं आईटी टेक्नोलॉजी जो है इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर्स वाले बहुत है उधर बहुत सी संस्थाएं आपका कौन सा रोड है उसमें तो बहुत सी उसमें
इलेक्ट्रॉनिक सिटी में पूरा
हाँ इलेक्ट्रॉनिक सिटी में तो वहां पर जो है वहां के कोई बड़ी कंपनी जो है इनके साथ कोलोबरेशन में करे तो क्या होता है हमारा कारोबार भी असहज हो जाता है और उनके नाम पर भी लोग आते हैं जैसे हमने आपको कहा ना पास्ट लाइफ थेरापीज एसोसिएशन के द्वारा बहुत अच्छे ऐसे ऐसे आए हुए थे हमारे पास क्योंकि हम उस फील्ड में नए थे परंतु वो लोग तो पहले से ही काम करते थे ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी भी उसके फील्ड में काम करता है तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है ऐसे जो भी स्थान है हाँ तो हम आपको अंबिकाबेन को कहते हैं बेंगलोर में भी ऐसे दो दिन की कॉन्फ्रेंस जैसे बॉम्बे में साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी पार्टनर्स इन प्रोग्रेस रखा हुआ था इस प्रकार से ऐसा बेंगलोर में भी हो सकता है या तो कुलदीप बेन को कह करके हैदराबाद में भी करें और उनके पास तो हमारे भाई साहब जो वहां के जो मुख्य भाई है बाला भाई आदि जो भी बाला भाई है ना उधर उसको जाकर के इन्फोसिस वाले से बात करें कॉन्फ्रेंस जॉइंटली स्पॉन्सर्ड बाय स्पार्क एंड इन्फोसिस इस प्रकार से करें तो अच्छा रहेगा और इसके कारण क्या होगा उस दुनिया के अंदर हमारा क्या कहे हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएंगी और इस प्रकार से उनको फिर यहाँ आबू में भी बुलाने का कारोबार करें इस प्रकार से सोचा जाए सोचो इसके ऊपर अंबिका बिन सोचे यहाँ हैदराबाद से कोई बैठा हुआ है यहाँ बाला भाई तो नहीं आया है और कोई नहीं आया बाला भाई को अरुण भाई कहेंगे श्रीकांत भाई बाला भाई से आप बात करें
सुमलता बेन है
अंबिका बिन बतावे क्या हो सकता है
भाई साहब ये अच्छी आइडिया है भाई साहब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और आईटी का जो भी कॉर्पोरेट्स है उनसे मिलके हम करेंगे भाई साहब वहाँ दो तीन यूनिवर्सिटीज भी है रिसर्च यूनिवर्सिटीज या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है उनसे कोलैबोरेट करके अच्छा। कर सकते
निमांस भी है उधर
हाँ निमांस वाले तो रेडी है भाई साहब उनका रिसर्च भी हमारा
उनके साथ ज्वाइंटली काम करते हैं तो अच्छा लगता है उनको भी लगता है कि हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली
जी भाई
आप सबकी राय है ऐसे बेंगलोर में या हैदराबाद में आईटी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के इन सब के कॉन्फ्रेंस उधर करें तो लोकल हो जाएंगे तो इसके कारण क्या होंगे आने जाने का खर्चा रहने का ये सब इतना बंदोबस्त नहीं करना पड़े हैदराबाद में तो बाबा का शांति सरोवर में ऑडिटोरियम बना हुआ है 2000 जितने लोग बैठ सकते हो शायद 2000 से भी ज्यादा बैठ सकते हो गए और वहां मैंने आपको कहा ना इन्फोसिस बिल्कुल बाजू में है बाला भाई जाकर के उनसे बात करें तो अच्छा हो जाएगा, एक नई हो जाएगा। ऐसे भी हमने इसमें देखा अभी तक जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भुवनेश्वर में भी हुई, हैदराबाद में दो बार हुई है, पुणे में हुई है, दिल्ली में हुई है। इस प्रकार से 2007 से 14 कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग स्थानों पर हुई थी। आबू और आबू के सिवा भुवनेश्वर, हैदराबाद में दो बार, पुणे, दिल्ली और इस प्रकार से हो सकती है। तो इस प्रकार से ट्राई करें। दिल्ली में इतना इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी इतनी नहीं बढ़ी हुई जितनी बेंगलोर और हैदराबाद में है। गुजरात में अहमदाबाद में भी गुजरात गवर्नमेंट ने ट्राई किया, उनके लिए खास मकान भी बनाया, परंतु कोई आया ही नहीं क्योंकि हिंटरलैंड नहीं था, तो कैसे कोई आएगा। उसके बाद में इन्होंने अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को मकान दे दिया। ट्राई तो किया गुजरात गवर्नमेंट ने पर नहीं हुआ। ठीक है बहन जी।
जी बस
भाई आप सबको ताली बजाओ, अंबिका बेन हाँ कहते हैं।
करेंगे भाई सब सारा मिलकर,
भाई आप सबके सामने बोल रहे हैं करेंगे।
सबका संकल्प है, गाइडेंस है, तो हम जरूर करेंगे।
नहीं नहीं मीटिंग की राय, मेरी अकेले की नहीं राय, मीटिंग की भाई में ऐसा होना चाहिए ना। फिर से हाथ खड़ा करो, देखो इतने लोगों की राय है।
जी बस
सुनने में नहीं आता
क्या बोल रहा
है? जो भी बोलना है यहाँ से लेके जाओ, माइक लेके जाओ ना उनको।
वारसी में करने लिए बोल रहे हैं।
दिल्ली में इतना रिस्पांस नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ इतनी ये इंडस्ट्री, वहाँ पॉलिटिकल साइंसेस के बहुत बातें हो सकती है। दिल्ली में आप जानते हैं पॉलिटिकल कैपिटल है, बॉम्बे में जो है फाइनेंशियल कैपिटल है, और ये जो बेंगलोर जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का कैपिटल है। जहाँ जो स्थान होता है वहां पर करे तो ज्यादा अच्छा होता है, रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड भी हमारा होना चाहिए ना। दिल्ली में अच्छा है, स्थान बहुत अच्छा है, बना हुआ है, हॉल भी बना हुआ है, रहने वालों की भी जगह है, परंतु पॉलिटिक्स की करें, पॉलिटिकल इकोनॉमी की बातें करें तो अच्छा है। बस तो अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ब्रेक है ना। अच्छा बस 6 से 6:30।
ओम शांति। हम सबके बीच में भाई जी ने अपना कीमती समय दिया, अपने विचार भी रखे, आप सबके सजेशंस भी सुने, उसके आधार पे जो कुछ भी प्रेरणाएं दी उसके आधार पे एक नई मूवमेंट भी हम शुरू करने जा रहे हैं। भाई जी का खूब खूब धन्यवाद।
सबका धन्यवाद
जी, सबका सबका धन्यवाद। आप सबका भी, आप सब ने बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन लिया, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी का भी धन्यवाद।